الحمد لله، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. دل میں آیا کہ آپ لوگوں سے یہ تو پوچھیں کہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں ہر مرتبہ کلاس سے پہلے، تو اس کا مطلب کیا؟ اس دعا کا مطلب کسی کو پتا ہے؟ معنی جی بتائیے. حق بھی دکھا دیجئے، باطل بھی دکھا دیجئے. اللہم ارزقنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ہاں ٹھیک ہے، یہی اس کا مطلب ہے. آپ نے آدھا بتا دیا تھا، لیکن باقی آدھا یہ ہے کہ جو انہوں نے پورا کر دیا کہ اے اللہ آپ ہمیں حق دکھا دیجئے، یعنی حق کو پہچاننے کی سمجھ عطا فرما دیجئے کہ کیا چیز حق ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز اچھی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اوپر چلنے کی، اس کو فالو کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے. ٹھیک ہے، کہ ہمیں پتہ چل جائے، یعنی ہمیں علم حاصل ہو جائے کیا سچ ہے، کیا حق ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی مل جائے. یعنی یہ نہیں کہ خالی پتہ چل گیا اچھی چیز کیا ہے لیکن کرنا ورنا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں کرنا بھی ہے نا، تو توفیق بھی اللہ سے مانگی کہ اللہ کروا بھی دیجئے، اور باطل کی پہچان عطا فرما دیجئے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری گندی چیزیں دکھا دیجئے دنیا کے اندر، گندی گندی چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز گندی ہے، ادھر بھی دیکھنا ادھر بھی دیکھنا. اچھا مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی گندی چیزیں دکھا دیجیے، نعوذ باللہ، بالکل بھی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غلط بات ہے، جھوٹ ہے، دھوکا ہے، تو آپ مجھے نا اس کی پہچان عطا فرما دیجیے کہ مجھے پتہ لگ جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ دس از ناٹ رائٹ. ٹھیک ہے نا، یہ صحیح بات نہیں ہے، مجھے پتہ لگ جائے، سمجھ میں آ جائے، اور پھر میں اس سے بچ بھی جاؤں. آپ مجھے اس کی بھی توفیق عطا فرماتی ہے کہ میں اسے بچ بھی جاؤں. ٹھیک ہے، تو یہ دعا جو ہے نا وہ ہم ہر کلاس سے پہلے مانگتے ہیں، اور آپ کو بھی ہر کلاس سے پہلے، چاہے وہ سیرت کی کلاس ہو، چاہے تفسیر کی کلاس ہو، چاہے وہ کوئی دین کی کلاس ہو، چاہے وہ دنیا کی کلاس ہو، دنیا کی کلاس میں تو اور بھی زیادہ مانگنا چاہیے اس دعا کو، دنیا کی کلاس میں تو اور بھی زیادہ مانگنا چاہیے اس دعا کو. ٹھیک ہے، جیسے آپ سائنس پڑھ رہے ہیں، آپ انگلش لٹریچر پڑھ رہے ہیں، تو اب اس کے اندر تو اتنا زیادہ جھوٹ اور اتنا زیادہ بری باتیں اور غلط باتیں اللہ کے بارے میں اور ریلیجنس کے بارے میں اور اچھی جو نیکس باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بڑی غلط غلط باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم سائنس پڑھ رہے ہیں یا ہم اس طرح کی اور کتابیں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں تو بہت زیادہ کنفیوژن کا چانس ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے بھی بہت زیادہ اس والی دعا کو مانگ لینا چاہیے. یعنی زیادہ سے مراد یہ نہیں کہ بس پڑھے چلے آ رہے ہیں، کتاب پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا، دعا ہی پڑھے چلے آ رہے ہیں، نہیں، اچھے سے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. ٹھیک ہے، جب دل سے دعا کرتے ہیں نا اس طرح سے. اچھا، اور this is a dua or order of Allah, as I think you told that it means that Allah says that give durood to Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں حکم فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ احزاب کے اندر. ٹھیک ہے، حق کو حق اور باطل کو باطل دکھا دیجیے. چلیں نہیں بتایا. اچھا، اب ہمارا ٹپیکل کوشچن کہ آخری کلاس میں کیا بات ہو رہی. جی، غزوات کے بارے میں بات ہو رہی تھی، غزوات اور سریا سرایات کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور यही कहना था आपने, चले माशाल्लाह। हाँ ये बात तो हो रही थी, ठीक है। गजवात के बारे में, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने जो जंगों का मामला फिर शुरू किया था, पहले जंगे नहीं लड़ते थे, पहले तो खाली ये था कि बस आप दीन की तबलीग करते रहें, लोगों को बताते रहें बताते रहें बताते रहें, और अगर कोई आपको मारे तो बस अपना डिफेंड कर लें अपने आप को, उससे ज्यादा और कुछ नहीं करें। तो अब फिर अल्लाह ताला का हुक्म आ गया कि अब आप अटैक भी कर सकते हैं, ठीक है, और करें अटैक। जी, ग़ज़वा बदर के बारे में अभी हमने पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। अच्छा, और कुछ? उस वक्त डिफेंड करते थे, हाँ, यानी जब कर सकते थे तो करते थे, अब अगर 10 लोग आकर के एक बंदे को पीटना शुरू करते हैं तो वो डिफेंड भी नहीं कर सकता अपने आप को, तो उस सूरत हाल में तो फिर पिटना ही पड़ता था। है, उससे पहले जंग हुई थी? नहीं, जंग नहीं हुई थी, एक छोटा सा स्क्रमिश कहते हैं उसको, स्क्रमिशेस थोड़ी सी, वो मक्का मुकरमा के अंदर एक हुई थी, हमने सीरियर क्लास में आपको बताई थी। उसमें भी शायद सात दस दिन अभी वकास ने ही जो है ना वो किसी को मारा था, कुछ था, मुझे अब याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन बस वो उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जी, छोटी वाली गजबात और बड़ी वाली गजबात, इसके बारे में है? अच्छा, छोटी वाली बदर और बड़ी वाली बदर, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, और कोई फर्क बताए सिराया में और गजवात में? हाँ, सरिया या सिराया वो जंगी मुहिम्मात थी, यानी वो मिशंस थे जिनमें नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को भेजा था, खुद नहीं गए थे, ठीक है ना। और गजवात उसको कहते हैं जिसके अंदर आप खुद भी गए थे। सराय में आप शामिल नहीं थे? जी बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, गजवात शामिल थे। और यहाँ क्या लिखा है? तीन गजवात पढ़ चुके हैं, फिर गजवा बदर, कुबरा और सुगरा बनाना है, बताना है। हाँ, तीन सराया हमने पढ़े थे और तीन गजवात पढ़े थे, ठीक है। सबसे पहले सराया से शुरू हुआ था, ठीक है, एक दो तीन, फिर उसके बाद जो है नबी अलैहि सलाम ने एक गजवा किया, फिर दूसरा गजवा किया, तीसरा गजवा किया, ठीक है। तो एक और डिस्कशन थी जो कि पिछली क्लास में हुई थी, लेकिन वो हमने पूरी नहीं करी थी, ठीक है। वो हमें याद है कि दाऊद भाई ने एक सवाल पूछा था कि, हाँ, वो हम गजवा अशीरा, जो तीसरा गजवा था ना, गजवा अशीरा, तो उसका जब जिक्र हुआ था कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो सहाबा को लेकर के निकले और एक काफले को लूटना था, ठीक है। उस काफले के अंदर बहुत सारा माल असबाब था, ठीक है, और 50,000 दीनार भी थे, 1,000 ऊंट भी थे, और उस काफले के सरदार जो थे ना वो हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, और उनके साथ जो है वो 27 आदमी थे, ठीक है। और नबी अलैहिस्सलाम जो है वो 150 150 सहाबा को लेकर के निकले थे, ठीक है। और नहीं, 1,000 ऊंट के साथ 1,000 बंदे नहीं, ये ऊंट जो है वो बेचने के लिए भी तो लेकर के जा रहे होते हैं, ठीक है। तो बंदे उनके साथ सिर्फ 100 सिर्फ 27 थे बस, ठीक है। तो अच्छा जी, तलवारें थी नहीं, अभी वहां नहीं पहुंचे। तो नबी अलैहिस्सलाम जो है ना 150 सहाबा को लेके निकले थे, और आप के साथ एक झंडा था, सफेद रंग का झंडा भी लेके निकलते थे, और हमजा रज़ी तआला को वो आप ने झंडा दिया, ठीक है। तो एक होते थे जिन कोई भी एक होते थे लश्कर के अंदर जिनको के झंडा दिया जाता था, वो झंडा लेकर के साथ चलते थे। ये झंडा किस लिए लेके चलते थे? झंडा जो था ना, ये एक तरह से ना उस फौज की ये एक साइन होता था टू शो पीपल कि भाई हाँ, हमारी अभी भी फौज जो है ना वो मौजूद है, यहाँ पे लीडर भी मौजूद है, फौज भी मौजूद है, एंड वी आर स्टिल फाइटिंग, हम अभी भी लड़ रहे हैं, हम अभी भागे नहीं है, हम अभी हारे नहीं है, ठीक है। झंडा अगर टूट जाता ना, झंडा अगर गिर जाता, ये इस बात का साइन था कि अब ये फौज या तो हार चुकी है, या जो है वो मर चुकी है, या भाग चुकी है, ठीक है ना। तो झंडा बहुत अहम होता था, झंडे का वहां पे मौजूद होना। इसी वजह से आज भी कहते ना, ये पाकिस्तान का फ्लैग, इंडिया वाले, ये इंडिया का फ्लैग है, हर फ्लैग 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 करते रहते हैं, हर नेशन अपने फ्लैग के बारे में इतना जो है वो शोर मचाती है, ठीक है। और फ्लैग को इतना अहमियत देते हैं कि जी फ्लैग नीचे ना गिरने पाए, जैसे वो एक मुसलमान जो है कुरान की आयत जमीन पे ना गिरने पाए, है ना, अल्लाह का नाम जमीन पे ना गिरने पाए, उसी तरीके से जो है ना वो नेशनल जो नेशनलिज्म है वो ये है कि हमारे मुल्क का झंडा जमीन पे ना गिरने पाए। क्यों भाई, झंडे के अंदर कौन सी कुरान की आयत लिखी हुई, क्या चीज़ है? नहीं, झंडा जो है ना वो हमारी नेशन का की अलामत है, हमारे मुल्क की अलामत है, साइन है ये हमारा, ठीक है, इट्स अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अस। तो ये अगर नीचे गिर गया तो इसका मतलब यह है कि हमने जो है ना वो अपने मुल्क की रिस्पेक्ट खत्म कर दिया। बहरहाल ये भी एक है, लेकिन इसका पीछे से जाकर के नबी अलैहि सलाम का भी अमल था कि झंडे की हिफाजत करते थे और सहाबा कराम ने झंडे के लिए जाने भी दिए, है ना, झंडे को नहीं नीचे गिरने दिया, उन पर बाद में जाकर के पढ़ेंगे। जी, झंडा पकड़ते थे एक हाथ से लड़ते भी थे, माशाल्लाह वो लोग तो दोनों हाथों से लड़ने वाले, और अगर किसी के अंदर था कि खाली झंडा पकड़ना ही उनका काम था बस। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु का तो हमें पता है, वो तो यूं लड़ते थे ऐसे करके, चौमुखी लड़ाई इसको कहते हैं ना, दोनों हाथों से लड़े होते थे, ठीक है। तो शायद उसी वजह से हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को झंडा देते थे कि एक हाथ पे झंडा पकड़ेंगे दूसरे से लड़ते भी रहेंगे, और अगर किसी और को देते तो शायद वो बेचारा एक ही को पकड़ रहता और दूसरे हाथ से लड़ नहीं पाता। हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु तो इतने पावरफुल थे, इतने जबरदस्त थे, वो तो दोनों हाथों से लड़ते। जी, झंडे वाला सबसे आगे। अच्छा, तो अच्छा आखिरी बात हमने जो करी थी ना, दाऊद भाई ने जो सवाल किया था उसका जवाब हमने जो दिया था वो पूरा जवाब नहीं था, फिर बाद में आपकी अम्मियों की क्लास हुई, उस अम्मियों की क्लास के अंदर जो है वो पूरा जवाब हुआ, फिर अब्बुओं की क्लास के अंदर भी फिर उसका जवाब बार बार रिपीट हुआ। इस पूरे एक हफ्ते के अंदर कई दफा इसके ऊपर बात हुई कि बच्चों ने सवाल किया था और बच्चों को ये जवाब दिया था। तो वो ये था कि नबी अलैहिस्सलाम जब जैसे पहुंचते थे किसी के ऊपर अटैक करने के लिए, है, तो हुआ क्या फिर, क्या अटैक हुआ, क्या ऊँटों को लूटा, क्या कोई माल वाल हाथ आया, जी दैर कुछ मिला? नहीं मिला, क्योंकि वो काफिला पहले से ही निकल गया, राइट। तो नबी अलैहिस्सलाम तो जिस मकसद से गए थे, जिस एक एक मकसद लेके गए थे ना, एक गोल लेके गए थे ना कि भाई ये करके आएंगे, क्या हुआ, ये गोल अचीव हुआ? गोल तो अचीव नहीं हुआ। क्या कहते हैं इसको उर्दू जुबान में या अंग्रेजी में, क्या कहते हैं इसको, यू सक्सीडेड इन योर गोल, आप कामयाब हो गए अपने गोल के अंदर, अपने मकसद के अंदर, या क्या हो गए, नाकाम हो गए, राइट। आप, यू डिड नॉट सक्सीड, यू फेल्ड इन योर अटेम्प्ट, ठीक है ना। तो सवाल आपने किया था, किसी और ने भी शायद किया था कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो हमने उसका जवाब उस वक्त तो ये दे दिया था ताकि हम क्लास में बता सकें आपको, है ना, कि ऐसा भी होता है, ठीक है। लेकिन इसका असल जवाब क्या है, इसका असल जवाब ये है कि अल्लाह ताला हमें ये बताना चाहते थे, क्या बताना चाहते हैं, अगर आपने से किसी को पता है तो आप बता दो क्यों हुआ इस तरीके से। चलो, ये घर में बैठे हुए आज कीबोर्ड मिल गया है, माशाल्लाह लिखे चले यार। जी चलिए, अच्छी बात है, अब लिखे हम पढ़ते हैं। When there were enough Muslims and Allah gave permission of fight to non with non-Muslims, they disturbed Muslims. So I was thinking, why do we hide and do all these dars and all? If we are on haq, then we should not be scared. And if anyone will disturb you or us, We can do jihad. चले करते हैं फिर अभी जरा नेक्स्ट टाइम आप सामने आए फिर आपके साथ जिहाद करते हैं, देखते हैं आपका क्या बनता है उसके बाद, ठीक है। जी, अब वी आर ऑन हक, तो फिर हमें जिहाद करना चाहिए ना, तो बस चल करें उसके बाद। उई अल्लाह नहीं कहिएगा उसके बाद, आउच, उई अल्लाह, प्लीज मत मारे, प्लीज मेरे ऊपर रहम करें, ये सब मत कहिएगा उसके बाद फिर, ठीक है भाई। जिहाद की प्रैक्टिस ट्रेनिंग करेंगे तो उसके बाद जिहाद करेंगे ना, खाली हक पे होने से कोई थोड़ी जिहाद शुरू हो जाता है, ठीक है। एक तो हक पे होना जरूरी है और दूसरा फिर ये भी है कि जिहाद करना भी आना चाहिए ना, बगैर कुछ ना तो घोड़ा चलाना आता है, ना तो तीर चलाना आता है, ना तलवार चलाती है, ना बंदूक चलानी, इधर से फायर करेंगे पीछे जाके गिरेंगे यूं करके, है ना, इतना शौक मिलेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो इसी वजह से ना जिहाद जो है वो जब तक फतवा ना आ जाए उसके ऊपर, मुफ्तियान कराम का, बड़े अकाबिर उलमाए कराम का फतवा ना आए, हुक्म ना आए कि अब मुसलमानों के ऊपर जिहाद फर्ज हो गया है, उस वक्त तक जिहाद नहीं कर सकते, ठीक है ना। और फिर उसके लिए ट्रेनिंग भी करनी होती है बहुत ज़्यादा, ऐसे बगैर ट्रेनिंग कुछ नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम बैठे जो कर सकते हैं वो तो करें ना, यानी दर्स, राइट, इल्म, सही गलत का पता तो बताएं। अभी तो हमें सही गलत का पता भी नहीं है। सच्ची बात यह है, आपके सवाल का जवाब एक और ये भी है, असल जवाब आपके सवाल का ये है कि हम समझ रहे हैं कि हम हक पर हैं लेकिन हम हक पे हैं नहीं, लेकिन हम हक पे हैं नहीं। दीन हक बेशक इस्लाम हक है, लेकिन क्या हम इस्लाम पर हैं? नहीं, वी आर नॉट ऑन इस्लाम। ये गलत फहमी अपने दिल से निकालना है। आपके सवाल का असल जवाब ये है, वी आर नॉट ऑन इस्लाम। तो हम दूसरे बंदे को क्या इस्लाम पे लेकर के आएंगे, ठीक है ना। इस वजह से जब तक दर्स नहीं होंगे और इल्म हासिल नहीं करेंगे, सही गलत का हमें पता नहीं चलेगा, हम जिहाद नहीं कर सकते। बिकॉज हम अगर लेकर निकल गए ना तलवार है, अगर हम बंदूक लेके निकल गए तो हम क्या करेंगे, हम जिहाद नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि जिहाद तो होता है भाई, आप पहले इस्लाम के ऊपर अमल करें फिर दूसरों को इस्लाम की तरफ बुलाएं। आप तो खुद आपको तो पता ही नहीं, कुछ नहीं पता ही क्या नहीं, क्या क्या होता है बातल क्या होता है, और आप दूसरों को बुलाने चले जाएंगे वो भी बंदूक लेकर के, तो क्या होगा फिर? जिहाद होगा या क्या होगा? फसाद होगा। जिहाद नहीं होगा, वो फसाद होगा, ठीक है ना। यानी खेस ऐसी दंगा फसाद दंगा मुश्ती, राइट। ये असल वजह ये है, ठीक है। इसी वजह से उलमाए कराम हमें फतवा दे ही नहीं रहे कि जाके जाके लड़ाई शुरू करो, ठीक है, क्योंकि हम हैं ही फसाद के ऊपर असल में जी। अच्छा, तो जवाब क्या था छोटी इसकी? हाँ, बड़े लोग तो सुन चुके हैं ना क्लास में, तो आप तो जवाब ना दें। टू शो अस दैट वी, हाँ आप भी सुन चुके हैं माशाल्लाह, तब भी ठीक है। हाँ हाँ तो इसका जवाब क्या था? अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि जब मैं चाहूंगा तभी फतह होगी, है ना। बिल्कुल आपने अच्छा जवाब दिया है, ठीक है, अच्छा जवाब दिया है कि अल्लाह ताला जो है ना वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि देखो फतह जो है ना ये तुम्हारी ख्वाहिश के ऊपर नहीं है कि तुम चाहते हो जीत जाना, तुम चाहते हो कि जी सक्सीड हो जाओ, सक्सेसफुल हो जाओ, जीत जाओ, है ना। तुम्हारे चाहने से नहीं होता, जो होता है वो मेरे चाहने से होता है। मैं जब चाहूंगा उस वक्त तुम कामयाब होगे, मैं जब नहीं चाहूंगा तो उस वक्त तुम कामयाब नहीं होगे, ठीक है ना। एक तो ये अल्लाह ताला बंदों को दिखाते भी हैं, ठीक है। मेहनत करनी होती है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होते हैं। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ताला हमें ये दिखाना चाहते थे कि देखो नबी अलैहिस्सलाम जो है ना ये मेरे नबी हैं, ये मेरे महबूब हैं, मेरे बिलवड हैं, ठीक है। ये जो है ना सबसे अच्छे इंसान हैं और मैं इनकी मदद भी करता हूं, लेकिन इनकी जबरदस्त बात जो है ना, इनकी सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये मेरी इबादत करते हैं, ये मेरी बंदगी करते हैं, ये मेरे बंदे हैं, ठीक है ना। ये जो मेरी इबादत करते हैं ना, इस इबादत में इन्होंने कोई शर्तें नहीं लगाई हुई, कोई कंडीशंस नहीं लगाई हुई कि अल्लाह अगर आप मेरी मदद करेंगे और मुझे हमेशा सक्सेसफुल करेंगे तब मैं आपकी इबादत करूंगा, वरना नहीं करूंगा, राइट। जैसे कि हम अपने बड़ों से कहते हैं ना कि जी आप जो है ना अगर मुझे साइकिल दिलाएंगे ना तब मैं पढ़ाई करूंगा, वरना नहीं करूंगा, है? अगर आप मुझे जो है ना वो फलाना टॉय दिलाएंगे ना तब मैं आपकी बात मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा, है? या अगर जो है ना आप मुझे वो इस तरह लेके जाएंगे और वहां पे स्विमिंग पूल होगा और वहां पे मजे आएंगे तब जो है ना फिर अच्छा बच्चा बन के रहूंगा, वरना नहीं बनूंगा, ठीक है ना। यानी आप मेरी ख्वाहिश पहले पूरी करें फिर मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा, ठीक है। ये बंदगी नहीं होती, इसको कहते हैं ब्राइब, इसको क्या कहते हैं, ब्लैकमेल करना, इसको ब्लैकमेल करना कहते हैं, ठीक है। आर्म ट्विस्टिंग भी कहते हैं, हाथ मरोड़ना किसी को, हाथ मरोड़ना मानते हैं मेरे पास नहीं मानते, अच्छा और मरोड़ूंगा तुम्हारे हाथ, ठीक है। इसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं, हाथ मरोड़ना कहते हैं, आर्म ट्विस्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये बंदगी नहीं होती। नबी अलैहिस्सलाम की जो जबरदस्त तरीन बात है ना, सबसे बड़ी बात है वो ये कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बंदे थे। अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को अच्छे हालात देते थे, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते थे, कितने अच्छे हैं, सादिक हैं, अमीन हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे, ठीक है। जब लोग नबी अलैहिस्सलाम को पत्थर मारते थे, पीछे पढ़ा है ना हमने, पत्थर मारते थे और पीछे से गंदी गंदी बातें करते थे और तालियां बजाते थे और इंसल्ट करते थे, नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त भी सब्र करते थे। क्या मतलब? उस वक्त भी जो है वो नेकी करते रहते थे और गुनाहों से बचते रहते थे, अल्लाह ताला की इबादत करते थे उस वक्त भी, ठीक है ना। हर हाल में नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से खुश, हर हाल में इबादत करने वाले, ठीक है। तो इसी तरीके से जिस तरह मक्का मुकरमा में अच्छे हालात भी, बुरे हालात भी, इज्जत भी, जिल्लत भी, सब कुछ चल रहा था, कामयाबी भी नाकामी भी, उसी तरीके से मदीना मुनव्वरा में भी ये चलता रहा, राइट। कामयाबी भी मिली, नाकामी भी मिली, इज्जत भी मिली और रुसवाई दूसरी शक्लों में, ये सभी चीजें मिली, सब कुछ मिलता रहा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इबादत नहीं छोड़ी, बंदगी नहीं छोड़ी, ठीक है ना। ये असल चीज है, वरना ये नहीं है कि जी माशाल्लाह इतने बड़े, ये हमारे यहाँ ना ये सुपरमैन वाली चीज नहीं होती। सुपरमैन जो है ना वो कभी हारता नहीं है, सुपरमैन इतना ताकतवर है, इतना हुआ है कि वो उड़ करके इधर से उधर जाता है, वो उठा के फेंक देता है, सब कुछ ठीक ठाक कर देता है, सब ठीक हो जाता है, राइट। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, दीन हमारा ये नहीं कहता। नबियों को हमारे दीन ने जो है ना, नबियों को, वलियों को हमारे दीन ने एज अ सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, वंडर वुमेन इस तरह से नहीं पेश किया। ये नॉन मुस्लिम्स की चीज है, नॉन मुस्लिम्स, काफिरों की चीज, मुसलमानों की चीज है नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो बंदगी है असल रीजन। अच्छा आपका नाम को थोड़ी पढ़ रहे हैं साहब। चलो अच्छा एक और बात गजवात के बारे में थोड़ी सी जरा डिटेल, कि नबी अलैहिस्सलाम जब किसी गजबे के लिए निकलते थे या अपने लोगों को लेके भेजते थे ना लड़ाई करने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु उससे पहले कुछ काम करते थे, या लाइक कुछ चीजें होती थी, ठीक है ना, जिनके बाद यानी प्रिपरेशन करके भेजते थे, प्रिपरेशन, उनमें एक प्रिपरेशन सबसे पहले क्या हो रही होती थी कि गेस करें, अगर सबसे पहले क्या चीज,
दुआ।
बंदे इकट्ठे करना, नहीं ये तो सबसे पहले वाली चीज,
दुआ।
नहीं प्रिपरेशन से मुराद यहाँ पर है कि आप फिजिकली क्या काम कर रहे हैं, क्या आप जो है वो बच्चों को जवाब दे रहे हैं, बच्चों की क्लास है, हुक्म आ चुका, बस आ गया, अब उसके बाद क्या करना है, क्या अमीर को तैयार करना, नहीं अमीर को तैयार तो
तलवारों
तलवारों को तेज करना, माशाल्लाह। सबसे पहला जो काम होता था ना वो ये होता था जासूसी का, एस्पियोनाज, एस्पियोनाज कहता हूँ, राइट, जासूसी करना, ठीक है, कि जो जंग लड़नी है तो कहाँ जा करके लड़नी है, ठीक है ना, कैसे लड़नी है, इसके लिए जो है ना नबी अलैहिस्सलाम ने भी और काफिरों ने भी, ये नहीं कि सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम ये काम करते थे, नॉन मुस्लिम्स भी यही काम करते थे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग जो कि आपको लड़ने से पहले करनी होती है, जासूसी करना कि दुश्मन क्या कर रहा है, ठीक है, दुश्मन की क्या मूव्स हैं, दुश्मन की क्या तैयारी हो रही है, दुश्मन क्या सोच रहा है, क्या प्लान कर रहा है और कहाँ से मूव कर रहा है, सबसे पहले ये चीज मालूम करनी। ये जो है ना कि काफिला जा रहा है, भाई नबी अलैहिस्सलाम ऐसे के थोड़ी निकल जाते थे, पहले नबी अलैहिस्सलाम को आपके जासूस यानी इंसान, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं, इंसान जासूस जो होते थे ना, जिनको आपसे सलाम ने भेजा हुआ होता था जाके खबर लेकर के आओ, वो जासूस आपसे सलाम को बताते रहते थे कि अब काफिलो काफिला इधर से निकल गया है, अब काफिला ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जासूसी का निजाम जो है ना आजकल, उसके लिए जो है वो पहले तो रेडार्स बनाए गए थे, स्पाइस सबसे पहले, ये तो उस जमाने के स्पाइस तो पहले के है ना, लेकिन अब इक्विपमेंट क्या बनाया गया, रेडार्स बनाए गए हैं, फिर अब जो है वो सैटेलाइट्स के जरिए से चेक किया जाता है कौन क्या कर रहा है ऊपर से, राइट, सैटेलाइट जो है वो एस्पियोनाज कर रही होती हैं, सर्वेलेंस कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा और फिर उसके बाद ये कि जब जासूसी बंदे को आपने भेज दिया, ठीक है ना, अब बंदा जो है वो उसने चेक तो कर लिया कि फलाना काम ये हो रहा है, ठीक है, अब वो क्या करेगा, आवाज देगा ओ जैसे कि हमारे यहाँ माशाल्लाह करामती दीन में है, उधर से आवाज दी, वो हवा ने आवाज पहुंचा दी दूसरे तरफ, नबी अलैहि सलाम वो जो है ना ऐसे जा रहा है, ये अब वो प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, अब वो इधर से जाने वाले हैं, उधर से जाने वाले हैं, नहीं ये नहीं होता, क्या होता था, लेटर्स भेजते थे, ठीक है ना। कैसे लेटर्स भेजते थे किसी को पता है? माशाल्लाह, उन्होंने तो ऑनलाइन जवाब दिया था, स्पाइंग, बिल्कुल सही जवाब दिया था, स्पाइंग, एस्पियोनेज जी। फिर उसके बाद जब स्पाई ने मालूम कर लिया, अब वो क्या करेगा? हथियार जमा करेगा। हथियार तो बाद में, बहुत बाद में आता है जी भाई। कम्युनिकेशन ना, अभी बात हो गई ना, जब जब उसने मालूम कर लिया तो ही हैज टू सेंड द मैसेज, राइट? कम्युनिकेशन, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। ये कम्युनिकेशन कैसे होती थी? और हाँ, कबूतर के जरिए से होती थी, माशाल्लाह। ठीक है, मोहम्मद आदी भाई कबूतर वाले हैं, मैंने रखा हुआ है घर में कबूतर भी। तो वो मुख्तलिफ तरीके होते थे। एक तरीका ये होता था कि कबूतरों को ऐसे ट्रेन करते थे कि उनको, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, लेकिन एक हमारे रिश्तेदार है, वो कहने लगे कि मैं एक दफा ना पाकिस्तान में बस का सफर कर रहा था, तो मेरे बराबर में एक बंदा आके बैठा, वो सारा रास्ता मुझे ये बताता रहा कि कबूतरों से वो कैसे पैगाम भेजते हैं। और ऐसे ऐसे ट्रेन कबूतर थे कि वो कहता है कि मैं, उस बंदे ने बताया कि मैं कबूतर को पता नहीं कहाँ छोड़ करके आ गया, वो वहां से जो है ना घर वापस पहुंच गया। ऐसे कबूतर को ट्रेन करता है, आई डोंट नो हाउ दे डू इट। ठीक है, तो कबूतर को सोर्स, डेस्टिनेशन की, यहाँ से उड़ना है, वहां पे जाना है, और पैर के अंदर बांध देते थे लेटर लिख करके, उसको किसी धागे वागे से जो है पैर में बांध देते थे। कबूतर वहां पे जा करके जिसके पास पैगाम पहुंचाना होता था उसके पास जाता था, वो बंदा उसको देख करके समझ जाता था कि अच्छा, इसके पैर के अंदर खत बंधा हुआ है, वो खत को खोलता था और पढ़ लेता था। ये एक तरीका था, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या था? लेटर गिवन बाय पिजन और बाय मैन, हाँ, बर्ड्स और मैसेंजर्स ऑन हॉर्सेस, घोड़ों के जरिए से। उन्होंने क्या किए हुए होते थे, बहुत ताकतवर और फुर्तीले और स्मार्ट किस्म के घोड़े उन्होंने तैयार किए हुए होते थे, ठीक है, बहुत तेज दौड़ते थे घोड़े, ठीक है। तो एक तो ये कि एक घोड़े के ऊपर बंदा बैठा और खूब तेज दौड़ता हुआ ना वो जगह पे पहुंचा और वहां पे उन्होंने जाकर के बता दिया, ये एक तरीका था, ठीक है। लेकिन इसके जरा लंबे डिस्टेंसेज होते थे ना, तो इतने लंबे डिस्टेंसेज में अगर एक ही घोड़े को दौड़ाते जाएंगे तो घोड़ा भी भाई कोई सुपर घोड़ा नहीं होता था, वो भी आखिर इंसान होता था घोड़ा भी आखिर को इंसान है, तो वो भी थक जाता था, ठीक है। तो बहरहाल उन्होंने क्या किया होता था, उन्होंने बीच में स्टेशन बनाए हुए होते थे, ठीक है ना, जैसे ट्रेन स्टेशन होते हैं, राइट? तो वो बीच में स्टेशन बनाए होते थे, तो हर स्टेशन के ऊपर एक नया घोड़ा तैयार होता था, बिल्कुल खा पी करके तैयार भागने के लिए, बिल्कुल थका हुआ नहीं होता था, फ्रेश घोड़ा, ठीक है। तो पीछे से भागता भागता जो बंदा आता था ना घोड़े के ऊपर, वो इधर आकर के अपना जो लेटर होता था वो आगे बंदे को दे देता था, वो अपने नए घोड़े के ऊपर बैठता था, फ्रेश घोड़े के ऊपर, और वो फुल स्पीड के अंदर भागता था, ठीक है। और फिर वो नेक्स्ट स्टेशन पे जाता था, वहां पे एक नया घोड़ा तैयार होता था, ये अपना लेटर उस घोड़े को वाले को दे देता था, वो लेकर के फ्रेश भागता था आगे, ठीक है ना। तो फ्रेश बंदा, फ्रेश घोड़े, इस तरीके से बहुत तेजी के साथ कम्युनिकेशन होती, ठीक है। तो जो जासूस होते थे, ये जासूस फिर कम्युनिकेट भी तो करेंगे ना, तभी तो फिर फायदा होगा उनकी जासूसी का, वरना क्या फायदा जासूसी करने का जी। नहीं, बीच में लोगों को तो सब पढ़ने की इजाजत नहीं होती थी, तो वो तो बड़ा अहम है। और नहीं, दोनों तरीके से, छुप करके भी, बस खाली आवाज सुन ली किसी तरीके से पता ना लगे उनको, और डिस्गाइज के जरिए से भी, कि उन्हीं के बंदे बन करके, जैसे कि हाँ हम तो आप ही कैसे, यानी वो आपको आपको दुश्मन नहीं कंसिडर कर रहे, वो आपको समझ रहे हैं कि ये तो आपको हमारा दोस्त है, लेकिन वो असल में जो है वो दुश्मन है, ठीक है ना। इस आपके अब्बा अम्मा के सारे बैठे हर किस्म के सवाल किए जा रहे हैं। नहीं चले, अच्छा, तो एक चीज जो है, सबसे पहली चीज जिहाद के लिए स्पाइंग, ठीक है। दूसरी चीज कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, जब ये सारी चीजें इत्तलात मिल गई, तो उसके बाद फिर नबी अलैहि सलाम मशवरा भी करते थे आपस, ठीक है, सहाबा कराम के साथ बैठ करके कंसल्ट भी करते थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमला करना चाहिए वगैरह। तो मशवरा भी होता था, कभी नहीं भी होता था, लेकिन होता भी था, ठीक है। फिर उसके बाद नबी अलैहि सलाम जो है वो किसी को जब यानी किसी को काफले का अमीर बना देते थे, असाइन करते थे, फिर किसी को जो है, इनको आप जरा बड़े हैं ना, छोटों का ख्याल रखना चाहिए, तो किसी को जो है वो काफले का अमीर बना दिया, किसी को जो है वो काफले का झंडा दे दिया, ठीक है, उनको याद दिलाते रहे कि क्लास में, कि किसी को झंडा पकड़ा दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद नबी अलैहि सलाम एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करते थे, वो ये कि जब जब निकलते थे तो पीछे मदीना मुनव्वरा के अंदर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बना करके छोड़ते थे, ठीक है ना, अपना नायब भी पीछे छोड़ते थे कि भाई मैं जा रहा हूं, तो ऐसा ना हो कि हर कोई कोई मसला खड़ा हो जाए, कोई आपस में कुछ झगड़ा हो जाए, कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, एंड देयर इज नो वन टू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट. नहीं, मेरे पीछे मेरा कोई नायब होगा, अगर कोई इशू होगा तो ही विल एक्ट ऑन माई बिहाफ, यानी खलीफा नामजद करके जाते थे, ठीक है ना. अब ये खलीफा जो है वो जरूरी नहीं है कि अबू बकर सिद्दीक रहता था ना नहीं खलीफा हो, नहीं, अबू बकर सिद्दीक तो साथ भी जा रहे होते थे हमेशा तकरीबन, ठीक है, उमर फारूक भी साथ जा रहे होते थे, तो किसी भी सहाबी को खलीफा बना करके जाते थे, ठीक है. तो ये चंद बातें थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए फिजिकली करते थे. दुआ मांगना तो अल्लाह ताला से बंदा मांगना नहीं, ये तो असबाब के दर्जे में इसको इसको कहते हैं, असबाब के दर्जे में, यूजिंग द मीन्स दैट आर अवेलेबल, ठीक है. अच्छा, तो गज़वा अशीरा जब खत्म हो गया ना, मुकम्मल हो गया, वापस आ गए, आप सरम को कुछ हाथ नहीं आया, ना ऊंट हाथ आया, ना पैसा हाथ आया, कुछ नहीं आया, वापस आ गए. तो उसके बाद क्या हुआ, चंद ही दिन गुजरे थे कि एक और मामला हुआ. एक बंदा था कर्ज बिन जाबिर फहरी, उसने ना मदीना मुनव्वरा के बाहर एक एक छोटा सा चरागाह थी, यानी जैसे घास घास वगैरह लगी हुई थी किसी जगह पे, चरागाह ग्रेजिंग लैंड, ठीक है, तो वहां पर मदीना मुनव्वरा के जो है ना वो ऊंट वगैरह वहां पे चरा करते थे, ठीक है. तो उसने क्या किया कि उसने अपने कुछ साथियों के साथ ना मदीना मुनव्वरा की चरागाह के ऊपर हमला कर दिया और वहां पे कुछ नुकसान वगैरह पहुंचाए मुसलमानों के जानवरों को, चरागाह को, ठीक है, बारा वारा उसने कुछ, ठीक है. तो नबी अलैहिस्सलाम को जब पता चला ना इसका, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सहाबा को कुछ लेकर के निकले और उसका पीछा किया, क्योंकि वो नुकसान पहुंचा करके भाग गया था वहां से, ठीक है, जाबिर बिन कर्ज बिन जाबिर फहरी. तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसका पीछा किया, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पहुंचे जो सफवान की वादी, ठीक है, एक वैली थी जिसका नाम था सफवान. ये जो वादी थी ना ये बदर के करीब थी, ठीक है. तो इसी मुनासबत से इस गजबे को गजबे बदर उला भी कहा जाता है. ये जो कर्ज बिन जाबिर फहरी था, तो ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे पहुंचे ना, तो उससे पहले ही ये वहां से भाग चुका था, ठीक है. इस गजबे के अंदर भी नबी अलैहिस्सलाम एक झंडा लेकर के निकले थे जो कि वाइट कलर का था, ठीक है, पीछे भी सारे जो सराया और गजबात थे वाइट कलर का झंडा लेकर निकले थे. और ये जो झंडा था ना आप ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ दिया था, ठीक है. अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे ही थे लड़ाई के अंदर, वो जबरदस्त कितनी अल्लाह ताला ने उनको ताकत अता फरमाई. अच्छा, अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जब बात आई तो एक और बात आपको बता देते हैं कि इससे पहले जो गजवा था ना गजवा अशीरा, तो उसके अंदर एक छोटा सा वाकया हुआ था कि नबी अलैहिस्सलाम कहीं से गुजर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे ना ये दोनों जमीन के ऊपर लेटे सो रहे हैं, है ना, थक गए होंगे और नींद आ जाती है थकावट के अंदर, और ये लोग थे भी बिल्कुल नौजवान ही थे, छोटे उम्र के, कम उम्र के थे, तो दोनों जो है ना जमीन पे लेटे सो रहे थे. तो क्योंकि मिट्टी थी जमीन के ऊपर तो इनके ऊपर मिट्टी लग गई थी, अली रज़ी अल्लाह के ऊपर मिट्टी लग गई थी, ठीक है. तो नबी अलैहिस्सलाम ने ना अली रज़ी अल्लाह को पैर से हिलाया, ठीक है, कि उठो अबू तुराब, ओ मिट्टी मिट्टी के बाप, फादर ऑफ सॉइल, नहीं अबू तुराब, यानी मिट्टी लग गई ना. तो मिट्टी लग गई तो आप सुसरम को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि देखो कैसे, है ना, कभी देखते हैं ना अपने बच्चों को सोता हुआ देखते हैं तो बड़ा प्यार आता है, ठीक है. तो नबी अलैहिस्सलाम को ऐसा प्यार आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उनको एक लकब से पुकारा. इस तरह के जो लकब होते हैं कुनियतें बन जाती हैं, ये प्यार की वजह से भी पुकारे जाते हैं, जैसे अबू हुरैरा, राइट, तो बिल्ली के अबू को थोड़ी थे, ठीक है, लेकिन बिल्ली थी, नबी अलैहिस्सलाम को बिल्ली का साथ होना पसंद आया, अबू हुरैरा कहना शुरू कर दिया. तो यहाँ पर अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फिर अबू तुराब का लकब मिला, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने कह दिया तो मुसलमानों ने फिर उसको पसंद कर लिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए. आज भी अबू अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अबू तुराब कहते हैं. अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं अगले बड़े गजबे के ऊपर, बल्कि पहला बड़ा गजबा और अगला गजबा, ये तो बनेगा गजबा नंबर 5, क्योंकि गजवा बदर पूरा जो था ना ये गजवा नंबर 4 बनता है इस तरतीब से. अच्छा, ये इस गजबे के वाकयात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही माशाल्लाह मजे मजे की बात है। तो इसमें यह हुआ कि कुरैश का एक काफिला जो है ना, जिसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने गजवा नंबर 3 में अटैक करने की कोशिश करी। गजवा नंबर 3 का नाम था गजवा अशीरा, अभी जिसकी बात हो रही थी कि जिसके अंदर 150 सहाबा को लेकर निकले थे, उनके पास 23 थे, 1,000 ऊंट थे। ये गजवा था गजवा अशीरा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काफले के ऊपर हमला करने के लिए निकले थे ना, उमर तान भी बहुत बहादुर थे, बहादुर तो सारे ही थे, इन लोगों का जरा ज्यादा नाम आता है लड़ाई वड़ाई के अंदर, सहाबा अली रज़ान और हमजा तान। इससे पिछले के हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, उनके नाम जो मुश्किल मुश्किल थे, गजवा बनी जमरा, ये पहला गजवा था आपसे सलम का बनी जमरा, दूसरा था गजवा बवात, ठीक है, तीसरा था गजवा अशीरा। गजवा अशीरा में वो 1,000 ऊंट वाले काफले के ऊपर हमला करने के लिए निकले थे, लेकिन वो काफला निकल गया था, ठीक है, काफला निकल के किधर गया था, नहीं वो शाम जा रहा था, अभी ये लोग जा रहे थे शाम, ठीक है, अबू सुफयान जो थे उसके सरदार थे। तो अब जब ये शाम चले गए और शाम में फिर इन्होंने जो चीजें लेकर आते थे वो उन्होंने बेच दी, ठीक है ना, तो अब उसके बदले में फिर इनको बहुत ज्यादा माल पैसा सोना चांदी वगैरह मिला, क्योंकि ये इन्होंने अपना प्रॉफिट बना इनका, और उन्होंने कुछ नई चीजें भी खरीदी होंगी, ठीक है, जो कि उन्होंने फिर आगे जाकर के मक्का मुकरमा में बेचनी थी या यमन में ले जाकर के बेचनी थी, ठीक है। तो अब जो है ना शाम से इतना सारा माल पैसा कमा करके अब ये काफिला जो है वो वापस आ रहा था मक्का मुकरमा, ठीक है ना, यही वाला काफिला। 1,000 ऊंट बेचे होंगे, तो एक ऊंट जो था ना कितना महंगा होता था, आजकल जैसे कि कोई अच्छी सी एक गाड़ी आप बेचें तो जितने पैसे मिलते हैं ना उतने पैसे उस जमाने के ऊंट के होते थे, बिकॉज ऊंट जो थी उस जमाने की गाड़ी थी। अगर वो सुर्ख ऊंट होते थे तो सुर्ख ऊंट जो थे वो मर्सिडीज बेंज के जैसे थे, या बड़ी बड़ी कोई इस किस्म की लग्जरी कार, लेकिन जो आम ऊंट होता था वो हमारी टोयोटा कोरोला जैसे होता होंगे, ठीक है। तो कितने पैसे कमाए होंगे 1,000 ऊंटों को बेच करके, वो सारा का सारा लेकर के अब ये लोग वापस आ रहे थे, ठीक है। तो अब नबी अलैहिस्सलाम ने फिर से प्लान बनाया, यानी जासूस थे, जासूसों ने बताया कि अब ये काफिला वापस आ रहा है, ये खबर कम्युनिकेट हो गई नबी अलैहिस्सलाम तक। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने प्लान बनाया कि अब इनको, चलो पहली दफा हम नाकाम हो गए, फिर ट्राई करते हैं, ठीक है जी।
सुरकुंड
स्पेशल इसलिए होते होंगे कि भाई देखने में अच्छे लगते हैं, मर्सिडीज स्पेशल को मर्सिडीज हवा में भी थोड़ी उड़ी होती है, राइट, लेकिन बस वो देखने में अच्छी लगती है, उसके अंदर कुछ ज्यादा अच्छी फिटिंग्स हुई भी होती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से सुरकुंड वगैरह का भी ये मामला है, जैसे आप बकरा खरीदते हैं तो पाकिस्तान के अंदर शायद आजकल 50,000 का भी बकरा मिलता है और 3 लाख का भी बकरा मिलता है, तो भाई बकरा बकरा होता है, उसकी भी 4 टांगे, इसकी भी 4 टांगे, इसकी भी 2 कान, इसकी भी 2 कान, वो 3 लाख का, ये 50,000 का, इतना फर्क क्यों होता है, देखने में अच्छा लगता है, बड़ा उसका गोश्त का मजा बड़ा अच्छा होता है, फलाना पता नहीं क्या सारी चीजों की। तो जब ये लोग वापस आ रहे थे ना फिर, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को जमा किया और हुक्म दिया कि कुरैश का तिजारती काफिला आ रहा है और उसके अंदर उनका माल दौलत है, तुम उस पर हमला करने के लिए बढ़ो, मुमकिन है कि अल्लाह ताला तुम्हें इससे फायदा दे, ठीक है, यानी उनका जो माल असबाब है उसको तुम हासिल करो तो तुम्हें इंशाअल्लाह फायदा होगा, ठीक है। अब ये अबू सुफियान जो थे ना, ये भी कोई कम नहीं थे, है ना, इनको भी पता था कि भाई एस्पियोनाज, स्पाइंग कैसे करनी होती है, कम्युनिकेशन कैसे करनी होती है, ठीक है, क्योंकि उस जमाने में क्या, हर जमाने में जब भी जंगें होती हैं उसके अंदर ये सब करना होता है। तो अबू सुफियान के भी स्पाइस थे, ये भी अपने स्पाइस को आगे आगे भेजते रहते थे कि पता करो कि कुछ सब ठीक है, रास्ता साफ है, कुछ हमला हमले का कोई तो खदशा नहीं है, ठीक है। तो इनके स्पाई ने आकर के इनको बताया, यानी मदीना मुनव्वरा में इनका स्पाई था, है ना, मुनाफिकीन भी तो थे ना मदीना मुनव्वरा में, तो इनके स्पाई ने मदीना मुनव्वरा में सारी चीजें देखी, खामोशी से सुनी और ये मैसेज जो है वो अबू सुफियान तक पहुंचा दिया कि नबी अलैहिस्सलाम जो है ना, ये मुसलमानों के प्रॉफिट, ही इज प्लानिंग एन अटैक, ठीक है। तो अबू सुफियान को जैसे ही पता चला ना, तो अबू सुफियान ने क्या किया कि एक बंदे को, डायरेक्ट तो खौफ बहुत हुआ उनको, पहले से ही खौफ था कि ये कुछ करेंगे मुसलमान, तो अब जो है ना उन्होंने क्या किया कि एक बंदे को घोड़े के साथ रवाना, नहीं ऊंट के साथ, क्योंकि इनका ये जो ये डेजर्ट एरिया है ना, तो इसके अंदर घोड़े तो खैर दौड़ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊंटों के जरिए से ज्यादा, और ऊंट भी बहुत तेज दौड़ते हैं, ये नहीं है कि भी खाली घोड़ा ही दौड़ता है, ऊंटों की तो बकायदा रेसिंग होती है, आपने देखा होगा कभी शायद, ठीक है। तो ऊंट के ऊपर ना उसको बिठाया और उससे कहा कि तुम ना अपने ऊंट के कान काट दो, ठीक है, यानी किसी तरीके से वो कैंची से छुरी से ना कान काटते थे, और उसका जो कुजावा, कुजावा कहते हैं जिसके ऊपर वो बैठते हैं ना, तो उसको यानी एक एक होता है ना भाई, आप बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं तो एक होता है सीधी चादर बिछाई, एक होता है उल्टी चादर बिछाई, ठीक। उसी तरीके से जो सोफा होता है उस पर आप बैठते हैं तो सीधा और उल्टा, आप उसको उलट दें अगर कुशन को तो वो उल्टा हो जाएगा, उसी तरह कुजावे को उलट दो किसी तरीके से, आई डोंट नो, हम कभी उठ के ऊपर इस तरह से किया नहीं, तो बहरहाल कुजावे को उलट दो, ठीक है। तो कान काट दो, कुजावा उलट दो, और अपनी जो तुम्हारी कमीज पहने हो ना शर्ट, उसको भी तुम फाड़ दो, आगे से भी फाड़ दो, पीछे से भी फाड़ दो, ठीक है। और तुम इस हाल में जो है ना मक्का मुकरमा में दाखिल हो, ठीक है, और वहां पे जाकर के लोगों को बताना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ हमारे काफले के ऊपर हमला करना, अच्छा हम उनके काफले के ऊपर हमला करना चाहते, ठीक है। क्योंकि ये काफला क्या था, ये काफला जो था ना ये मक्का मुकरमा के सामान को लेकर के गया था, मक्का मुकरमा के सारे लोगों के सामान को लेकर गया था शाम में बेचने के लिए, और शाम से उसके बदले में जो प्रॉफिट आया था उसको वापस मक्का मुकरमा लेकर के आ रहा था। तो इसके अंदर जो है ना वो मक्का मुकरमा के तकरीबन हर अमीर बंदे का की इन्वेस्टमेंट हुई हुई थी, माल लगा हुआ था इसके अंदर, एंड दे वर ऑल वेटिंग फॉर इट कि आएगा फिर हमें पैसे मिलेंगे, हम और अमीर हो जाएंगे, ठीक है। तो अबू सुफियान ने ऐसे मैसेज भिजवाया, क्यों भिजवाया, कान कटवा करके ऊंट के उस बंदे से कहा अपनी कमीज को फाड़ दो और जो है वो कुजावा उलट दो, इस क्यों
थैंक
आप ये पहले से अटैक तो किया नहीं था, और अगर अटैक कर दिया तो फिर तो कहते हैं भाई अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब जाने का कोई फायदा नहीं है, अब तो खत्म। हाँ इस तरह से जो करते हैं ना, इससे क्या होता है कि इंसान जब इस तरह की चीजें देखते हैं या सुनते हैं ना तो वो पैनिक नहीं करते, पैनिक का लफ्ज सही नहीं है, उससे कहते हैं सेंसेशनलाइज कर देना किसी चीज को, बहुत ज्यादा आपके जज्बात, जैसे कि कोई आए और खूब आपके सामने रोना शुरू कर दे, है ना, उसके बाद फिर वो अपना कोई बात बताए तो आपके ऊपर ज्यादा असर होता है ना, कोई आए आकर के आप ऐसे करके कोई आपको अपने दुख सुनाना शुरू कर दे, कहते हैं यार ये तो कहते ही रहता है, जाने दो जाने दो, और आके के कोई दहाड़े मार मार के रोना शुरू कर दे आपके सामने, आप यार हाँ पता नहीं क्या हो गया यार, वाकई कोई बहुत बड़ा मसला है, कुछ करना चाहिए फौरन इसके लिए, ठीक है ना, हेल्प के लिए आप तैयार हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है तुम बताओ जो भी तुम कहोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ऐसे जो है ना लोगों के जज्बात जो है ना उसको कहते हैं भड़कना, ठीक है, जैसे आग भड़कती है उसी तरीके से हमारे अंदर की फीलिंग्स जो होती है ना ये भी भड़कती है, और इंसान जो है ना फिर ज्यादा तेजी से एक्ट करता है, ठीक है। इस वजह से अबू सुफियान ने ऐसे किया था, ये ह्यूमन साइकोलॉजी से वो ही वॉज प्लेइंग विद ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है। तो उस अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस तरह से जैसे जंगों के अंदर अगर आपने सुना हो, जंगों के अंदर जो है ना वो ट्रम्पेट्स को ब्लो करते हैं, बड़ा जोर जोर से ट्रम्पेट्स ब्लो करते हैं, जमाने में ढोल भी पीटा करते थे, ये जो ढोल पीटते थे ना जोर जोर से, बहुत सारे लोग होते थे उनका काम सिर्फ ढोल पीटना होता था, ठीक है, और ट्रम्पेट्स बजाना होता था, और कभी ऐसा भी होता था खूब जोर जोर से चीखे मारना भी होता था। मुसलमान क्या करते हैं, अल्लाह अकबर जोर से अल्लाह अकबर की तकबीर करते हैं, अल्लाह अकबर की तकबीर सुनकर के जो दूसरे लश्कर वाले होते हैं नॉन मुस्लिम, उनका दिल दहलना शुरू हो जाता, ठीक है। तो इन सब चीजों से इंसानों के ऊपर इफेक्ट होता है, तो इसने इसी वजह से अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस बंदों को ऐसे करके भेजा। अब ये बंदा जो है वो बहुत तेजी से रवाना हुआ अपने ऊंट के ऊपर, भागता हुआ जो मक्का मुकरमा आ रहा है, इतने अरसे में एक और काम हो गया। जी तो क्या होगा हाँ बिल्कुल, एनिमल अब्यूज भी था और वो तो भाई नॉन मुस्लिम भी थे और हर किस्म का अब्यूज करते थे जी, तो सूरत हाल की संगीनी बताने के लिए। हाँ अच्छा, इतने अरसे में मक्का मुकरमा के अंदर क्या हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम की थी एक फुप्पी, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू की बहन, कितनी फुप्पियां थी किसी को याद टोटल, ये कंफर्म नहीं है कि मुसलमान बाद में हो गई थी या नहीं हुई थी, उस वक्त वो मुसलमान नहीं, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम के चचा कितने थे, ताया चचा वगैरह, 11। ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम की फुफिया कितनी थी, 6। ठीक है, उनमें से सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा बड़ी मशहूर है, वो मुसलमान हो गई थी और बहुत बड़ी सहाबिया थी। ठीक है, ये वाली जो थी ना, इनका नाम था आतिका, आइन से आतिका, ठीक है, बिनते अब्दुल मुतलिब, दादा अब्दुल मुतलिब थे उनके अबू भी। ठीक है, तो इन्होंने जो है ना एक ख्वाब देखा, और ख्वाब क्या था, सच्चा ख्वाब। नॉन मुस्लिम थी, नॉन मुस्लिम के साथ उधर रहती थी, लेकिन इन्होंने ख्वाब देखा और बड़ा सच्चा ख्वाब। ठीक है, अजीब ख्वाब था, यानी अल्लाह ताला ने इनको ख्वाब दिखाया। ठीक है, वो कैसा ख्वाब था कि ये ख्वाब आपको सुना करके फिर बाकी डिस्कशन अगली क्लास में इंशाल्लाह। उन्होंने ख्वाब देखा कि एक शख्स जो है ना वो ऊंट के ऊपर सवार आ रहा है, हत्ता कि वो आकर के अबतह का एक जगह थी मक्का मुकरमा के बाहर, अबतह, वो वहां पे आकर के रुक जाता है। ठीक है, फिर वहां से ना जोर जोर से लोगों को कहता है, पुकार पुकार करके वहां से आवाजें देता है कि लोगों 3 दिन के अंदर अंदर अपनी कत्ल गाहों में जाने के लिए तैयार हो जाओ, यानी जहां तुम्हें कत्ल किया जाएगा, मजबा गाहें, जैसे कि यहाँ पे लगा होता है ना मजबा बकरे को दबा करने के लिए, आप इधर ले जाए वहां पे बकरा दबा करने। ठीक है, तो जहां पे तुम्हें कत्ल किया जाएगा ना, उन उस जगहों पे जाने के लिए तुम तैयार हो जाओ विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर तैयारी कर लो। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि सारे लोग जो है ना उस पुकारने वाले शख्स के गिर्द जमा हो गए। फिर उसके बाद वो वहां से चला, अब्ताह के मकाम से चला और बैतुल्ला के अंदर दाखिल हो गया। अब ख्वाब में तो ये सब कुछ होता है, दूर से चला एकदम से बैतुल्ला के अंदर दाखिल हो गया। ठीक है, काबतुल्ला के अंदर, और लोग उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। ठीक है, फिर वो शख्स जो है ना वो एकदम से ऊंट के साथ ही काबतुल्ला की छत के ऊपर नजर आना शुरू हो गया। ठीक है, फिर काबतुल्ला के छत के ऊपर जाकर के फिर उसने यही अल्फाज कहने शुरू कर दिए कि लोगों 3 दिन के अंदर अंदर अपनी कतल गाहों में जाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद वो शख्स जो है ना काबतुल्ला की छत से उतर करके वो चला गया अबू कुबैस, जो पहाड़ है ना मक्का मुकरमा के अंदर, इसका पहले भी हमने तस्करा सुना था। अबू कुबैस के पहाड़ का कहाँ जिक्र हुआ था, किसी को याद? अबू कुबैस पहाड़, जब नबी अलैहिस्सलाम ने मुआजजा दिखाया था, कौन सा वाला, शक्तुल कमर का मुआजजा, तो चांद 2 टुकड़े हो गया था और एक टुकड़ा जो है ना वो अबू कुबैस पहाड़ के पीछे चला गया था और दूसरा टुकड़ा जो है वो सफा पहाड़ के पीछे चला गया था, मरवा के पीछे चला गया था, इस तरह से। तो अबू कुबैस पहाड़ के ऊपर ये शख्स चढ़ गया। ठीक है, और वहां पे जाकर के जो है ना उसने क्या किया कि एक पत्थर था उस पहाड़ के ऊपर, वो पत्थर जो है ना वो नीचे उसने लुढ़का दिया। ठीक है, अब अबू कुबैस पहाड़ जो है वो मक्का मुकरमा की जो बस्ती थी उस जमाने में छोटी सी थी, जैसे आजकल जो मुताफ है मस्जिद हराम है, देयर वॉज ऑल मक्का मुकरमा। ठीक है, तो वहां से पहाड़ से उसने पत्थर लुढ़काया, वो पत्थर जो है ना वो पहाड़ की चोटी से नीचे आया और टूटना शुरू हो गया। टूट टूट करके क्या हुआ कि उसके टुकड़े जो थे ना वो उड़े और मक्का मुकरमा के अंदर जितने घर थे हर घर के अंदर एक टुकड़ा चला गया। ठीक है, कोई घर ऐसा ना बचा कि जहां उसके टुकड़े ना पहुंचे हों। ये उन्होंने ख्वाब देखा। ठीक है, कैसा अजीब ख्वाब था, और इसके बाद इनकी आंख खुल गई। ठीक है, फिर इन्होंने जो है ना वो ख्वाब अपने भाई हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को सुनाया, जो कि नबी अलैहि सलाम के चचा थे, इनके भाई थे, सगे भाई। ठीक है, अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को सुनाया तो अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने सुनकर कहा, अल्लाह की कसम आतिका, तुमने बहुत अजीब ख्वाब देखा। ठीक है, तो तुम ना किसी को नहीं बताना इस ख्वाब को, मुझे बता दिए, तुम किसी को ना बताना। ठीक है, उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप मेरे भाई थे, आपको तो मुझे बता नहीं था, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब्बास रतान जो है ना फिर सुन करके ना वहां से निकले और उनको फिर अपने एक दोस्त मिले, दोस्त जो कि काफिर था, वलीद बिन उतबा। ठीक है ना, तो दोस्त मिला, तो अब दोस्त जो होता है तो फिर उसके साथ कुछ चीजें शेयर करता है बंदा, तो इनका इनकी दोस्ती थी वलीद बिन उतबा से, तो इन्होंने जो है ना वलीद बिन उतबा को ये ख्वाब बता दिया, आतका अपनी बहन का ख्वाब वलीद बिन उतबा को बता दिया और उनसे कहा कि आगे किसी को नहीं बताना। राइट, इस तरह की जब चीजें होती है ना तो फिर मर्द भी कभी ऐसे करते हैं, बस तुम्हें बता रही हूँ, आगे किसी को ना बताना। फिर वो आगे बता दिया, कहते मैं तुम्हें बता रही हूँ, आगे किसी को ना बताना, इस तरह से पूरी टॉक ऑफ द टाउन। यहाँ पर भी यही हुआ। ठीक है, कि वलीद बिन उतबा ने फिर किसी अगले बंदे को बताया, तुम्हें बता रहा हूँ, आगे किसी को ना बताना, उसने अगले बंदे को बताया, हत्ता कि इट बिकेम टॉक ऑफ द टाउन, हर बंदे को ये ख्वाब पता चल गया। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे की बातें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी कोई और सवाल अगर किसी को पूछ पाओ। जी वलीद ने अपने अब्बू को बताया, उतबा को, हाँ उसने उतबा को बताया होगा, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। हाँ वलीद ने जाकर ये ख्वाब अपने बेटे, नहीं बेटा तो ये गलत लिखा हुआ है ना, वलीद बिन उतबा है तो भाई बाप उतबा को सुनाया। हाँ तो आप यही आपने यहीं से पढ़ा हो। चले और कोई सवाल यहाँ ऑनलाइन? ऐसे लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तशद्दुद किया होगा। तशद्दुद किया होगा, अच्छा, ये जो ऊंट को काटा और इनका कपड़ा फाड़ दिया तो ऐसे लगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस बंदे को पकड़ करके ना बहुत मारा पीटा और नाउदुल्ला इस तरह से हुलिया बना दिया है, तो वो लोग और ज्यादा गुस्से में आ जाए और जल्दी से तैयारी कर लें। हाँ ये भी डेफिनेटली ये भी उनकी नीयत हो सकती है। ठीक है कोई और अगर सवाल नहीं है तो हम क्लास को खत्म करते हैं इंशाल्लाह। Thank you.